તારીખ 23/3/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 116
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 609 છેલ્લે વિષય ચાલ્યો કે ધર્મના સર્વસાધનને ગૌણ જાણવા, નિર્વાણનો મુખ્ય હેતુ સત્સંગ છે અને તે સત્સંગ સર્વાર્પણ બુદ્ધિથી ઉપાસવો યોગ્ય છે. જો સર્વાર્પણ બુદ્ધિથી સત્સંગની ઉપાસના કરવામાં આવે તો બીજા ધર્મ સાધન પણ સુલભ થાય છે, અથવા બીજા ધર્મ સાધનથી આત્મલાભ સુલભ થાય છે. અને એ વાત પોતે પોતાના આત્મ સાક્ષાત્કારથી કરી રહ્યા છે. એ વાત કરવામાં પોતાનો સાક્ષાત્કાર છે અથવા પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. સાક્ષાત્કારનો અર્થ છે પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. એ પ્રકારે ભૂતકાળમાં પોતે પણ સત્સંગની ઉપાસના કરેલી છે અને વર્તમાનમાં તેમની જે દશા વર્તે છે એ સ્પષ્ટ છે કે પોતાના આત્મ સાક્ષાત્કારથી કેટલો લાભ થયો છે. તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે જો આ જીવને કલ્યાણ પ્રાપ્ત ન થાય તો અવશ્ય આ જીવનો જ વાંક છે, કેમ કે તે સત્સંગના અપૂર્વ, અલભ્ય, અત્યંત દુર્લભ એવા યોગમાં પણ તેણે તે સત્સંગના યોગને બાધ કરનારા એવા માઠા કારણોનો ત્યાગ ન કર્યો. એ વિષય ચાલે છે આપણે સ્વાધ્યાયમાં કે નિર્વાણનો મુખ્ય હેતુ એવો જે સત્સંગ એ પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ મુમુક્ષુ આત્મકલ્યાણની દિશામાં કાંઈ પણ પ્રગતિ ન કરે તો એ જ મુમુક્ષુનો પોતાનો જ માર્ગ છે, પોતાની જ આડોડાઈ છે, પોતાની જ વિપરીતતા છે. કેમ કે અપૂર્વ એવો સત્સંગ, અલભ્ય એવો સત્સંગ, અત્યંત દુર્લભ એવો સત્સંગનો યોગ, તેમાં પણ આ જીવે તે સત્સંગને ના યોગને બાધ કરનારા, સત્સંગને બાધ કરનારા ન લેતા સત્સંગના યોગને બાધ કરનારા જે પરિણામો સત્સંગની અંદર જોડાવા જોઈએ, સત્સંગ સાથે જોડાવા જોઈએ, સત્સંગ સાથે મેળ ખાવા જોઈએ, એવા પરિણામ ન થાય, એવા પરિણામ ઉત્પન્ન થાય, એવા વિપરીત પરિણામો પોતે ઉત્પન્ન કર્યા. એ માઠા કારણોના રૂપ પરિણામો કેવા હોય એનો નીચે વર્ણન કરે છે કે એક તો મિથ્યા આગ્રહ, પૂર્વે જે કાંઈ પોતે ગ્રહણ કર્યું છે એના ઉપર ચોકડી મૂકી દેવી જોઈએ. જો સત્સંગનો ખરેખરો લાભ લેવો હોય તો પૂર્વે જે કાંઈ ગ્રહણ કર્યું છે એની પકડ બિલકુલ નહીં હોવી જોઈએ. એ યથાર્થ છે કે અયથાર્થ છે એની મેળવણી ભલે કરે મધ્યસ્થ થઈને, પણ એની બિલકુલ પકડ નહીં હોવી જોઈએ. પોતાની માન્યતા છોડ્યા વિના, વિપરીત માન્યતાઓનો ત્યાગ કર્યા વિના ગમે તેટલા સત્સંગની અંદર સમય વ્યતીત કરે, ગમે તેટલો સમય વ્યતીત કરે, એ સત્સંગ સફળ નહીં થાય, નિષ્ફળ જશે. જેમ કે સત્સંગ સિવાયના ધર્મ સાધનોની મુખ્યતા વિચારી હોય, અથવા એવો નિર્ણય કરી રાખ્યો હોય, જ્ઞાનીના સત્સંગની તો સર્વોત્કૃષ્ટ મુખ્યતા છે, નહીતર સુપાત્ર જીવોનો સત્સંગ કરવો જોઈએ. એકાંત એટલે એકલા બેસી, એ મુમુક્ષુને યોગ્ય નથી. એકાંતમાં બેસીને ધ્યાન કરવું કે સત્સંગને છોડીને એકાંતમાં બેસવું, ભલે પછી તત્વ વિચારણા કરવા, ચિંતન કરવા, મનન કરવા, એ પણ સલાહ ભરેલું નથી, નોટ એડવાઇઝેબલ. આમાં ઘણા ભૂલ કરે છે કે આપણે બધાને સાથે બેસવા કરતાં એકાંતમાં બેસીને આપણા તત્વનું ચિંતન કરો, આત્મચિંતન કરો, ધ્યાન કરો. કોઈ ધ્યાનની શિબિરોમાં, ધ્યાન કેન્દ્રોમાં પણ જાય છે, યોગના કેન્દ્રોમાં જાય છે, એ સલાહ ભરેલું નથી. એમાંથી નુકસાન થવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. લાભ થવાનો તો એક બાજુ રહ્યો, નુકસાન થવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. એટલે બધા સાધનોને ગૌણ કરીને એ વાત છે. ઉપર જે કહ્યું કે બધા સાધનોને ગૌણ કરવા, એમાં બધી વાત આવી જાય છે કે સત્સંગ એટલે સત્સંગ જોઈએ, સૌથી મુખ્ય એ હોવું જોઈએ. ધ્યાનનું સ્ટેજ બહુ આગળ ઉપર છે, જ્ઞાન દશાનો છે, કેમ કે જ્ઞાન વિના ધ્યાન હોતું નથી. અને અનેક જગ્યાએ કૃપાળુ દેવે એ વિષયમાં મુમુક્ષુઓનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. 335માં કહ્યું છે, 335 પત્રમાં, કે જે સત્પુરુષને ઈચ્છે તે ધ્યાનાદિકને ઈચ્છે નહીં, એવો અમારો અભિમત છે. આ અમારો અભિપ્રાય છે, અભિમત એટલે અભિપ્રાય છે. 466માં પણ એ વાત કરી છે કે કોઈ એમ વિચારે કે ધ્યાનથી, યોગથી કે બીજા એવા એવા સાધનોથી આત્મકલ્યાણ થઈ જશે, પણ તે પ્રકારે આત્મકલ્યાણ થતું નથી. મુમુક્ષુનું આત્મકલ્યાણ થવું એ સત્પુરુષના જ્ઞાનમાં છે, ત્યાં પણ સત્પુરુષની પાસે લઈ ગયા છે. એટલે સત્સંગ કરવા ઉપર જ એમનું મુખ્ય વજન છે. એનું કારણ પોતે પણ એવો પરિશ્રમ કરી ચૂક્યા છે, અને એ પરિશ્રમમાં સફળ નથી થયા પછી સત્સંગ મળ્યા પછી સફળ થયા છે. એટલે પોતાના આત્મ સાક્ષાત્કારથી એ બધી વાતોનો એમણે ફેંસલો આપેલો છે. અચ્છે ચલ રહે કા મતલબ ક્યા? તો ઇસમે કોઈ ઉલટા સુલટી બાત હોતી તો કૈસે પતા ચલેગા? ઉસમે કોઈ ગડબડ હોગી, વિપરીતતા હોગી તો ખુદ કો પતા કૈસે ચલેગા? હમ તો માનેંગે કે હમારે પરિણામ અચ્છે ચલ રહે હૈ, ક્યા કરતે હૈ. બેરોમીટર કુછ કરને કી કોઈ જરૂરત નહીં હૈ, કોઈ ગડબડ કરને કી જરૂરત નહીં, સત્સંગ મેં હી જાના. और वही ज्ञानी की आज्ञा है उसका ही पालन करना है. उसमें स्वच्छंद से दूसरा रास्ता ढूंढना और ढूंढने का प्रयास करना, ये गड़बड़ मत करना, सीधी सादी बात.
अच्छा, अगर हमारे को असाता का उदय है और हम जाने की परिस्थिति में नहीं है, या तो असाता के उदय में लगता कि प्रयोग काल है, चलो अच्छा प्रयोग करके देखते हैं, उस हेतु से अगर सत्संग को बंद करते हैं तो
जाने के सक्षम नहीं हो तो अलग बात है, जा सकते हैं तो पहले जाना है, वो जरूरी है, सत्संग में उपस्थित रहना वो जरूरी है। बाद में करना है, बहुत टाइम है। सत्संग 24 कलाक तो मिलने वाला नहीं है, वो तो बहुत दुर्लभ है, तो पहले उसका लाभ उठा लेना है, फिर बाद के समय में प्रयोग करना कौन ना देते हैं, प्रयोग करने के लिए तो 24 घंटा है। बीमारी चली गई तो कोई बात नहीं, प्रयोग करने के तो सब उदय के सभी प्रयोग, सभी प्रसंग प्रयोग करने का ही होता है। देखिए हमारे संसार के सभी उदय ही प्रयोगशाला है, चाहे बीमारी का उदय हो, चाहे साता का हो, चाहे खाने का हो, पीने का हो, कोई भी उदय ले लो, सभी उदय हमारा प्रयोग का ही कारण बन सकता है, वो प्रयोगशाला ही हमारी है। इसलिए प्रयोग के लिए हमें कोई साधन भी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो क्रम से आ ही रहा है। एक समय भी संसारी जीव को ऐसा नहीं है कि जिसमें उदय न हो, आठों कर्म का उदय न हो, ऐसा एक समय भी नहीं है। तो प्रयोग करने के लिए तो पूरा समय है हमारे पास। सत्संग कहाँ है? सत्संग इतनी सस्ती चीज नहीं है, वो बहुत महंगी चीज है, ऐसी बात है। इसलिए तो तरण विशेष अपूर्व सत्संग का अपूर्व अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ ऐसा योग, अपूर्व योग लेना अलभ्य है, अलभ्य मैंने लाभ नहीं मिले ऐसा, ऐ मैंने नहीं, लभ्य मैंने लाभ मिलने योग्य, लाभ मिलने योग्य नहीं है, सस्ता नहीं है, अपूर्व है, अलभ्य है और दुर्लभ है। रेयर केस में कहीं एक जगह होता है, कहीं एक दो जगह मिलता है सत्संग, हर जगह नहीं मिलता। पैसा हर जगह मिलता है, कलकत्ता में भी मिलता है, बम्बई में भी मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है और छोटे मोटे गांव में भी मिलता है, हर जगह पैसे वाले भी होते हैं। अपने को तो आत्मकल्याण की जरूरत के दृष्टिकोण से सत्संग करना है, कोई शौक हमारा है इसका पोषण करना है, ऐसी बात सत्संग में नहीं होती है। उसका प्रश्न ऐसा नहीं, दूसरा विभाव भाव के बराबरी में ऐसा सत्संग हम करें जैसा वो कहती है, ऐसा सत्संग करें तो क्या ठीक है, ऐसा प्रश्न है, ठीक ना? प्रश्न ऐसा है ना? तो मतलब क्या हुआ कि हमारी नजर अन्य विभाव भाव पर है, अन्य विभाव भाव से इनकी हमको बराबरी करनी है, ऊपर वाले परिणाम से हमारे परिणाम के मिले बराबरी नहीं करनी है, नीचे वाले परिणाम से हमारे गिनती करनी है, हमारे परिणाम तो अच्छे हैं ना, वो भी दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ऐसा दृष्टिकोण भी होना नहीं चाहिए। एक निष्ठा से, आत्मकल्याण की एक निष्ठा से, एक लक्ष्य से, सर्वार्पण बुद्धि से सत्संग की उपासना करनी चाहिए, ऐसे आज्ञा है।
टाइम लिमिटेशन को बांध करके अगर हम सत्संग करें,
क्यों टाइम लिमिटेशन को क्यों बांधते हो? टाइम लिमिटेशन को क्यों बांधते हो?
डिसिप्लिन होना।
इसमें डिसिप्लिन की कौन सी बात है? अगर टाइम लिमिट से ज़्यादा सत्संग कर लिया तो उसमें इनडिसिप्लिन कैसे होता है? हाँ तो ये बताओ ना, डिसिप्लिन की बात क्यों बीच में लाते हैं? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे दूसरे दूसरे काम का महत्व रख करके हम बैठे हैं, सत्संग का महत्व रख करके सत्संग में नहीं बैठे हैं, दूसरे काम का महत्व रख करके हम सत्संग में बैठे हैं। तो वो सत्संग कैसे फलवान होगा? हमारी प्रायोरिटी कहाँ है सत्संग पे? कोई प्रायोरिटी तो है नहीं। कोई काम बिगड़ा, मानो जिम्मेवारी वाला कोई काम बिगड़ा तो आत्मा में क्या बिगड़ा वो तलाश करो, वो वहाँ प्रयोग करो ना, वहाँ प्रयोग करो। मानो के सत्संग में ज़्यादा बैठने से कोई काम बिगड़ा भी, मान के चलो, इससे तो कोई दूसरी बात नहीं ना, तो उस वक्त प्रयोग करो कि आत्मा में क्या बिगड़ा, देखो तलाश करो क्या बिगड़ा आत्मा में, बताओ। तो ये सब बहानेबाजी है सत्संग को गौण करने की, सब बहानेबाजी है। आप अभी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आप टाइम पर क्यों बंद करते हो, टाइम हो गया, चलो विषय अच्छा चलता है फिर भी टाइम हो गया है? हमारा कान पकड़ो ना। ऐसा है कि सामूहिक रूप से बहुत जने इकट्ठे होते हैं तो उसमें एक पंक्चुअल टाइम की पंक्चुअलिटी इसलिए जरूरी है कि वो सामूहिक सत्संग बराबर रेगुलर मेंटेन हो जाए। लेकिन जो तत्वरसिक जन होते हैं और एक दो चार जने ऐसे बैठते हैं सत्संग में, उसमें कोई टाइम का सवाल नहीं होता है, सारी रात भर बैठो। हम बाबूजी बैठते थे रात का एक एक दो दो बजे तक बैठते थे, कई मुमुक्षों के साथ बैठते हैं, कभी कभी टाइम का पता नहीं चलता है कितना घंटा चला गया। अरे एक मुमुक्षु के साथ तो सुबह 4 बजे तक बैठे थे, रात को 8-9 बजे से चालू हुआ थे, सुबह 4 बजे तक। फिर उनको ऐसा लगा कि इनका उनका नियम था कि पूजा किए बिना वो कुछ लेते नहीं थे और सर्विस में जाते थे, तो सर्विस में तो पूरा परिश्रम करना पड़ता है। फिर बोले कभी घंटा दो घंटा नहीं सोएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, फिर सो गए वो। तो ऐसे सत्संग के भी अनेक प्रकार होते हैं। एक सामूहिक रूप से 150 जने या इससे भी ज़्यादा 100-200-500 जने स्वाध्याय में आते हों तो वहाँ टाइम पंक्चुअल होना जरूरी है, अगर रोजाना करना है तो। और 2-4 जने 5-6 जने जो भी हो और तत्व का रसिक हो तो उसमें कोई टाइम लिमिट का सवाल नहीं रहता है, तो अलग अलग ढंग से वो बात होती है। इसमें कई प्रकार के जीव आते हैं, जब बहुत जने आते हैं तो उसमें एक योग्यता वाले नहीं आते हैं, हो सकता है, लेकिन इनकी कैपेसिटी भी कुछ होती है। जब कुछ रस होता है तो कैपेसिटी भी कुछ होती है, ऐसा ही बनता है ना। इसलिए सामूहिक रूप से जब होता है तब टाइम पंक्चुअल रहे तो वो बात हमेशा के लिए निभेगी। अगर निभाना है रेगुलर स्वाध्याय का क्रम निभाना है तो उसमें टाइम का पंक्चुअल होना जरूरी है। दूसरा ये भी है कि जब एक सी योग्यता वाले नहीं होते हैं तो क्या होंगे कि जो जिसको व्यवसाय है, काम है, अनेक प्रकार की जरूरियत, वो समझ के ही आए हैं, एक घंटा वहाँ चलता है, एक घंटे के बाद अपना काम एडजस्ट करके आए हों, वो जाने लग जाएंगे। तो जो बैठे हैं उसमें से कुछ लोग जाने लग जाएंगे तो वैसे इनडिसिप्लिन तो हो ही गया। वो जो एटमॉस्फेयर है वो तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो इसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए एक घंटा करीब करीब वो टाइम लेजिटिमेट टाइम है, एक घंटा बैठना, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। मुमुक्षु को तो ऐसा चलना चाहिए कि ऐसा सत्संग हमें बहुत बहुत मिला करे, जितना भी ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। उसके लिए उसको प्रयास करना चाहिए कैसे ज़्यादा मिले, वो जुटाने का प्रयास करना चाहिए। वो भी कोई सिखाने की ज़रूरत होती है क्या? जिसको जिसकी ज़रूरत होती है वो क्या करेगा, वो कोई सिखाने की ज़रूरत होती है? उसमें अपने को दरकार नहीं है ऐसी भूल हो जाती है। जिसको दरकार होती है वो बार बार खुद ही खोजता है कि भाई कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है हमारी जानने में, नहीं आवे ऐसा तो कहीं नहीं बन रहा है ना। भूख लगी है वो वैसे बनता है ना, वो तूफान होता है, ये बॉम्बे में बॉम्बार्डिंग हुआ, वहाँ ऐसे लोग होते हैं कि जिसको घर नहीं है, होटलों में खाना है, कई जगह ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, अब सब बंद हो जाता है, वो भूख लगी है और सब बंद हो गया है, क्या करेंगे? कहाँ खुली है, कौन से एरिया में खुला होगा, वहाँ जाएगा। वो दवाई की ज़रूरत पड़ती है, रात को 12 बजे डॉक्टर को बुलाते कि नहीं बुलाते? फिर डॉक्टर बोले कि ये दवा अभी चाहिए, तो 24 आवर्स मेडिकल स्टोर कौन सा खुला रहता है, किस एरिया में खुला रहता है, एडवांस में पता लगा करके रखते हैं, क्यों? इसका टेलीफोन नंबर रख लेते हैं, डॉक्टर का टेलीफोन नंबर रखते हैं, जितनी जितनी ज़रूरियात लगती है सब प्रोविजन हम रख लेते हैं। तो सत्संग की हमें ज़रूरत लगी हो तो उस विषय में भी हमारी सब प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, सीधी सादी बात है। बात चली थी एक साल भर पहले मैं कलकत्ता आया तो कभी अपने को स्वतंत्र रूप से सत्संग करने की बैठने की जगह नहीं है। कहीं जगह बैठते हैं तो जो भी इनके ट्रस्टी लोग होते हैं, जो भी कोई ट्रस्ट की प्रिमाइसिस होती है तो उनके कहीं डिस्टर्बेंस रहता हो, कुछ न कुछ गड़बड़ रहते थे, चला करते थे, और काफ़ी चली भी थी उन दिनों में। तो हमने ये कहा कि हमारे रहने के लिए तो बराबर अच्छे से अच्छा फ्लैट अच्छा एरिया में, हाँ, वो सब व्यवस्था रखते हैं, हमारी सब प्रकार की दिनचर्या, हमारी टेव, हमारी कुटेव जो भी हो वो सब मेंटेन होवे, ऐसी सब व्यवस्था रखते हैं। तकिया पतला चाहिए तो पतला, बड़ा मोटा चाहिए तो मोटा, हाँ, बैठने में ऐसी बैठक, वो सब छोटी मोटी सब व्यवस्था रखते हैं। एक स्वाध्याय के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ये बात कैसी है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था भी प्रायोरिटी में लेकर के बिठानी चाहिए। इसकी अगर हमें ज़रूरत हो तो, अगर ज़रूरत नहीं हो तो हम क्या करें? सबको साथ में करना चाहिए, हम क्या करें वो बात आएगी, मैंने दूसरे पंप लगा देंगे।
बिना चंदा इकट्ठा करे और यहाँ पे अगर मंदिर बनाना रहेगा तो चंदा इकट्ठा करके देंगे।
हाँ, लड़के की शादी में चंदा नहीं करते हम,
भी मेरी
वहाँ तो प्रेस्टीज पॉइंट खड़ा हो जाता है, तो पीछे से थोड़ी तकलीफ भी पा करके वो काम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। उस वक्त तो ऐसा अभिप्राय रहता है कि हमारा जैसा किसी का न हो, सबसे बढ़िया हमारा हो, हमारा नाम निकले उसमें। और स्वाध्याय आदि का आत्मकल्याण की व्यवस्था करनी हो तो भाई आप भी लिखाओ, आप हमारे से बड़े ज़्यादा लिखाओ, आप तो हम तो आपने से छोटे हैं थोड़ा कम लिखाएंगे, या बड़े भाई का ज़्यादा होना चाहिए छोटे भाई का कम होना चाहिए। हमारे जैसे चला था एक मुमुक्षु के साथ, क्योंकि बड़ा भाई ने कितना लिखा है वो पहले बता दो फिर हम लिखाएंगे। मैंने क्यों, ये हमारे से बड़े हैं, इनका अच्छा दिखना चाहिए, हमारा अच्छा दिखे वो अच्छा नहीं। मैंने को मोक्ष में जाने का होगा तो आप बड़ा भाई की इंतजार करेगा कि वो गया कि नहीं गया, मैं बाद में जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं मोक्ष में चला जाऊंगा तो इसका अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आत्मकल्याण में ऐसा देखा नहीं जाता, सबके सब जाने हमारे परिणाम इतने हैं, हम तो ये करेंगे, ये आना चाहिए। कई प्रकार के मिथ्या आग्रह होते हैं, असंख्य प्रकार हैं इसके, कितने हैं, असंख्य प्रकार हैं। उस सबको सत्संग के माध्यम से सबको छोड़ना चाहिए, वो सब छूट जाना चाहिए। स्वच्छंदपने में दो प्रकार हैं, एक तो तीव्र रस वाले जो परिणाम है जिसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है वो स्वच्छंद है, तीव्र रस से परिणमन होना हिचकिचाट बिना हिचकिचाट, ये भी स्वच्छंद है। और ज्ञानी की आज्ञा की उपेक्षा करके या गौण करके अपनी मनमानी करना, अपन को जचे अपन के अनुकूल पड़े ऐसा साधन करना, अनुकूल नहीं हो ऐसा साधन नहीं करे। सत्संग में अनुकूल नहीं है, उपवास करना हमको अनुकूल है, भक्ति करना हमको अनुकूल है, सत्संग अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं चलता। मिथ्या आग्रह के परिणाम, स्वच्छंद के परिणाम, प्रमाद के परिणाम शिथिलता, अभी मूड नहीं है नहीं आएंगे, या थोड़ा सा साता असाता का कारण बनता है, या कोई मामूली सा काम बीच में आ जाता है, छोड़ दो सत्संग को छोटे मोटे कारणों से, ये सब प्रमाद है। स्वच्छंद में तो बहुत से पॉइंट आते हैं, लेकिन इसलिए उसको जनरल कर दिया। उसमें जो उसमें लिए हैं ज्ञान मार्ग से, क्रिया मार्ग से, भक्ति मार्ग से जो कोई साधन करते हैं, लेकिन किस क्रम से ये काम करना चाहिए उसको छोड़ करके अक्रम रूप से ज्ञान मार्ग की प्रवृत्ति हो, क्रिया मार्ग की प्रवृत्ति हो, भक्ति मार्ग की प्रवृत्ति हो, सब स्वच्छंद में जाता है।
वजन चला
मैंने क्रम को छोड़ देना, वो सब स्वच्छंद में जाता है। अभिप्राय की भूल मैंने क्या, अपनी मनमानी हम करते हैं, जो इस विषय में अनुभवी हुए ऐसे अनुभवी पुरुष की हम नहीं मानते हैं, और हमारा अनुभव नहीं है फिर भी हमको ठीक लगे ऐसा करते हैं, वो सब स्वच्छंद में जाते हैं। हमको ये ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे हम उस ग्रंथ पढ़ने के लायक हो नहीं हो, वो नहीं देखना है हमको, इसमें रस आता है, ऐसा नहीं चलता। प्रमाद और इंद्रिय विषय की उपेक्षा न की हो, मैंने पंचेंद्रिय के विषय में उदासीनता नहीं आई हो, नहीं आई हो तो क्या होता है कि तीव्र रस से परिणाम होते हैं, और ऐसे तीव्र रस के परिणाम होने से सत्संग में जो आत्मरस का आविर्भाव होना चाहिए वो रस उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? कि तीव्र रस से उदय में प्रवृत्ति करने से परिणाम में अधिक मलिनता उत्पन्न हो जाती है, और ये मलिनता निर्मलता को रोकती है। इसलिए सत्संग मिले फिर भी निष्फल होने के ये चार प्रकार के मुख्य कारण हैं। मिथ्या आग्रह में प्रतिबंध होता है, प्रमाद में भी प्रतिबंध होता है, इंद्रियों के विषयों में भी प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध तो सब में लागू पड़ता है। निर्मलता आती है और सभी चारों प्रकार के दोष है वो एक निष्ठा और अपूर्व भक्ति से ये चारों प्रकार के दोष बहुत आसानी से छूट जाते हैं, बहुत आसानी से छूट जाते हैं। मैंने रात भर बैठते थे, इतना बहुमान था कि उनके पैर मैले होने नहीं चाहिए, ये पवित्र चरण को मलिनता नहीं लगनी चाहिए, उनके वैसे बहुमान होते हैं, होता है, करते हैं। सत्पुरुष का बहुमान करने से लोग क्या बोलेंगे इसमें? कोई अपने गुरु का बहुमान नहीं करता है जगत में, वो तो रिवाज है। अपने गुरु का बहुमान करने तक तो हर संप्रदाय में रिवाज है, ये तो लोक रूढ़ी आजकल हो गई है, उसमें टीका टिप्पणी का कौन सा प्रकार है? वहाँ तो कोई टीका टिप्पणी का प्रकार हो ही नहीं सकता। करते हैं कि नहीं करते? अंधश्रद्धा वाले भी करते हैं। जब अंधश्रद्धा वाले भी बहुत करते हैं तो फिर जिसकी अंधश्रद्धा नहीं है, समझदारी से जो बहुत करें, इसमें तो होना ही चाहिए, होता ही है, इसमें क्या नवीन बात, कौन सी नई बात है उसमें, कोई नई बात? वो तो बनेगा, बन सकता है। अपने को समाज लोक संज्ञा में ज्यादा नहीं रहना है, लोक संज्ञा में ज्यादा नहीं रहना है। मीरा माई का तो दृष्टांत है ही, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। वो राजघराने की थी, साधु के संग बैठती थी, लोग टीका भी करते थे, कोई गलीच बातें भी करते थे, सब बात सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने देखा कि उन लोगों से मेरा क्या लेना देना है। जो लोग कुछ ऐसे टेढ़ी नज़र से देखते हैं तो मेरे तो कोई लेना देना तो है नहीं उन लोगों से, अपनी योग्यता का वो जाने, वो तो अपने अपने मार्ग में वो आगे बढ़ते थे। तो ऐसे अपने मार्ग में आगे बढ़ने वाले को कोई दरकार नहीं होती है। संसार में भी जिसको जो काम की जरूरत लगती है ना, उसमें कोई किसी की नहीं देखता है, अपना काम कर ही लेता है जिसको जरूरत लगती है। जिसको सत प्रकट हुआ हो उसका संग करें, या जिसको सत प्रकट होने की पूर्व तैयारी हो उसका भी संग करें। और वो कैसे पता चले कि हमको सत का रंग चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? जिसके संग में जाकर के हमको सत का रंग चढ़ता है तो वो सत्संग बराबर है, अगर हमको सत का रंग नहीं चढ़ता है तो वो सत्संग नहीं है, कहीं गड़बड़ है। इसके लिए कृपालु देव ने मोक्ष माला में 24 नंबर का पाठ लिखा है, सत्संग, सत्संग का पाठ लिखा है। वो जो पाठ है, वो पाठ इधर जगह है ना, थोड़ा आगे आगे आ जाओ। बहुत सुंदर, 17 साल की उम्र में मोक्ष माला लिखी है, सत्संग का पाठ कितना बढ़िया लिखा है, ध्यान देने लायक है, बहुत सी बातें लिखी है। इस प्रकार का सत्संग करना चाहिए, होना चाहिए। अथवा सत्संग में एक निष्ठा अपूर्व भक्ति नहीं आई हो, नहीं वास्तव में उसमें हमारे में गड़बड़ है, सामने में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारे में है उसमें। तो पहली बात तो वो है कि हम आत्म कल्याण की लक्ष्य से एक निष्ठा से सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बात है। वो पूरा पाठ पढ़ने का तो समय नहीं बचेगा, इसमें ही बहुत बाकी है, चालू पत्र में भी है जी। सत्संग का पाठ पढ़ना है, पढ़ लें, इसमें क्या है, हम तो नम्र आदमी हैं, आप लोग काम वाले हैं। पहला वचनामृत है, सत्संग सर्व सुख का मूल है क्या, और हमारे आत्म जागृति में इसी वचनामृत में को हमने इस सूत्र बनाया है, सत्संग सर्व सुख का मूल है। इधर आता है फ्रंट पेज में, सत्संग सर्व सुख का मूल है, कृपालु देव का वचनामृत है। सत्संग के पाठ में 17 वर्ष में वो पाठ लिखा है। सत्संग मिला के उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है, वांछित सिद्धि में कोई बाहर की बात नहीं है, आत्म कल्याण हो ही जाता है। एक जगह तो बहुत लिखा है कि यथार्थ सत्संग मिले और जीव का कल्याण न हो तो समझना के विश्व में वो 11वां आश्चर्य है। 10 तो हो है, ये 11वां नया आश्चर्य पैदा हुआ। जैसे कोई आश्चर्य होता है ना, तो 10 आश्चर्य कुछ होगा, कुछ न कुछ कोई कि ये आश्चर्यकारी घटना है, वो आश्चर्यकारी मकान है, वो आश्चर्यकारी वो है, ये 11वां आश्चर्य है, ऐसा बन ही नहीं सकता। लेकिन अपनी निष्ठा चाहिए, चाहे जैसा पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है। सत्संग की एक घड़ी जो लाभ देती है वह लाभ कुसंग के 1 करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते, अपितु वे अधोगतिमय महापाप कराते हैं तथा आप आत्मा को मलिन करते हैं। सत्संग का सामान्य अर्थ यही के उत्तम का सहवास, हमारे से जो उत्तम हो उनके संग में रहना। जहाँ अच्छी हवा नहीं आती वहाँ रोग की वृद्धि जैसे होती है, वैसे जहाँ सत्संग नहीं वहाँ आत्मरोग बढ़ता है। दुर्गंध से तंग आकर जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, वैसे ही कुसंग का सहवास बंद करना आवश्यक है। साथ साथ कुसंग की बात लेते रहते हैं। संसार भी एक प्रकार का संग है, और वह अनंत कुसंग रूप एवं दुखदायक होने से त्याग करने योग्य है। संसार कुसंग है ऐसा कहते हैं। संसार कुसंग है या जिम्मेवारी का प्रसंग है, क्या है? हाँ? अनेक प्रकार की जिम्मेवारी वाला काम आते रहेगा और कुसंग चालू रहेगा। चाहे जिस प्रकार का सहवास हो, परंतु जिससे आत्मसिद्धि नहीं है वह सत्संग नहीं है। आत्मा को जो सत्य का रंग चढ़ाए वह सत्संग है। निष्ठा होने पर भी अगर सत्का रंग नहीं चढ़ता है तो वहाँ सत्संग नहीं है। जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री है। उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना यह भी सत्संग है। अगर बाहर में सत्संग सत्पुरुष का नहीं मिला तो है। हाँ, बहुत अच्छा दिया है। जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री है। बाकी होटलों में खाने पीने का साथ में हो जाए वो कोई मैत्री का सवाल नहीं रहता है कि चलो सर्कल अच्छा है घूम पिकनिक में चले जाए वो कर ले हैं, वो कोई मैत्री की बात नहीं होती है। मोक्ष में साथ देने वाले को मैत्री कहते हैं। उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना यह भी सत्संग है। सत्पुरुषों का समागम भी सत्संग है। मलिन वस्त्र को जैसे साबुन तथा जल से स्वच्छ करते हैं, वैसे आत्मा की मलिनता को शास्त्र का बोध और सत्पुरुषों का समागम दूर करके शुद्ध करते हैं। जिसके साथ सदा परिचय रहकर राग रंग गान तान और स्वादिष्ट भोजन सेवित होते हों, वह तुम्हें चाहे जैसा प्रिय लगता हो तो भी निश्चित मानो कि वह सत्संग नहीं प्रत्युत कुसंग है। सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। तत्वज्ञानियों ने मुख्य बोध यह दिया कि सत्संग का सर्वसंग का परित्याग करके अंतर में रहे हुए सर्व विकार से भी विरक्त रह करके एकांत का सेवन करो, इसमें सत्संग की स्तुति आ जाती है। सर्वथा एकांत तो ध्यान में रहना या योगाभ्यास में रहना यह है, परंतु समस्वभावी का समागम जिसमें एक ही प्रकार की वर्तना का प्रवाह निकलता है वह भाव से एक ही रूप होने से बहुत मनुष्य के होने पर भी और परस्पर का सहवास होने पर भी वो एकांत रूप ही है, उसको एकांत गिना जाता है। और ऐसा एकांत मात्र संत समागम में रहा है। कदाचित कोई ऐसा विचार करेगा कि विषयी लोगों का मंडल का मिलना होता है ये क्लब वगैरह में, वहाँ संभाव होने से यानी एक सरखे वर्तना वाले होने से उसे एकांत क्यों न कहा जाए। इसका समाधान तत्काल हो जाता है कि वे एक स्वभावी नहीं होते, उनमें परस्पर स्वार्थ बुद्धि और माया का अनुसंधान होता है, और जहाँ इन दो कारणों से समागम होता है वह एक स्वभावी या निर्दोष नहीं होता। निर्दोष और स्वभावी समागम तो परस्पर शांत मुनीश्वरों का है तथा धर्म ध्यान प्रशस्त अल्प आरंभी पुरुषों का भी कुछ अंश में है। जहाँ स्वार्थ और माया कपट ही है वहाँ समस्वभाव नहीं है और वह सत्संग भी नहीं है। सत्संग में जो सुख आनंद मिलता है वह अति स्तुति पात्र है। जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हैं, देखो अब सत्संग कैसा होना चाहिए उस विषय में बहुत बढ़िया लिखा है। जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हैं, जहाँ उत्तम ज्ञान ध्यान की सुकथा होती हो, जहाँ सत्पुरुषों के पवित्र चरित्र पर विचार किया जाता हो, जहाँ तत्व ज्ञान के तरंग की लहरें उठती हो, जहाँ सरल स्वभाव से सिद्धांत के विचार की चर्चा होती हो, और जहाँ मोक्ष जनक कथन पर पुष्कल विवेचन होता हो, ज्यादा विवेचन होता हो आत्मकल्याण के विषय में, ऐसा सत्संग महादुर्लभ है। अब देख लेना कि हमारे सत्संग में ये सब बातें चलती हैं या कोई दूसरी बातें चलती है, बस यहाँ से पता चल जाएगा कि हम कृपालु देव की आज्ञा में चलते हैं या इधर उधर चले जाते हैं। कोई यूं कहें कि सत्संग मंडल में क्या कोई मायावी नहीं होता, तो इसका समाधान कि जहाँ माया और स्वार्थ होता है वहाँ सत्संग ही नहीं होता। राजहंस की सभा में कौवा दिखाव से कदाचित न भापा जाए तो राग से अवश्य भापा जाएगा, आवाज निकलेगी तो पता चल जाएगा। मौन रहा तो मुख मुद्रा से ताड़ा जाएगा, परंतु वह छिपा नहीं रह पाएगा, वो छिपा रह पाएगा नहीं। जिसका अभिप्राय विरुद्ध है उसका पता चल जाता है, नहीं बोलता है तो भी पता चल जाता है। उसी प्रकार मायावी स्वार्थ से सत्संग में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पेट भरने की बात तो होती नहीं। दो घड़ी वहाँ जाकर विश्रांति लेते हो तो भले ले ले कि जिसमें कि जिससे रंग लगे, और रंग न लगे तो दूसरी बार उसका आगमन नहीं होगा, उसको रस नहीं आएगा, वो तो खुद ही छोड़ देगा सत्संग को। जैसे पृथ्वी पर तैरा नहीं जाता, तैरने का तो पानी में होता है, वैसे ही सत्संग से डूबा नहीं जाता। पृथ्वी पर कोई डूबता नहीं कि पानी नहीं है कहाँ डूबेगा, ऐसे सत्संग में कोई डूबता नहीं है। मैंने सत्संग का कोई अवगुण नहीं है, नुकसान तो है ही नहीं। ऐसी सत्संग में चमत करती है, निरंतर ऐसे निर्दोष समागम में माया लेकर आए भी कौन, कोई दुर्भागी हो सकता है, और वह भी असंभव है। सत्संग आत्मा का परम हितेशी औषध है, आत्मा का परम हित करने वाला ये औषध है। सत्संग के विषय में तो एक पाठ लिखा है, लेकिन कृपालु देव के ये वचनामृत तो सत्संग पूरा 609 तो सत्संग पर ही है, और भी अनेक पत्र में सत्संग की बातें चली है। अपूर्व भक्ति, ऐसी एक अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना की हो तो अल्पकाल में मिथ्या आग्रह आदि सभी प्रकार के दोष नाश को प्राप्त होता है, और अनुक्रम से जीव सर्व दोष से मुक्त होता है। सत्संग की पहचान होनी जीव को दुर्लभ है। बात तो यह है कि यथार्थ सत्संग कहाँ मिलता है इसकी पहचान होनी ही दुर्लभ है, ये कठिन बात है थोड़ी। कोई महत्वपूर्ण योग से यह पहचान हुए होने से निश्चय होता हो जाए कि यही सत्संग है, यही सत्पुरुष है, या सत्संग कॉमा करके सत्पुरुष ले लिया है, ऐसा साक्षी भाव मैंने प्रतीति आ जाए, विश्वास आ जाए, खात्री हो जाए, ऐसा उत्पन्न होने से उस जीव को जिसको पहचान हुई हो उसको तो अवश्य करके वर्तमान प्रवृत्ति का संकोच कर लेना। व्यवसाय करता हो तो व्यवसाय कुछ कम करके समय निकालना, या दूसरे जो भी प्रकार के उदय हो उस उदय में से प्रवृत्ति की संक्षेपता करके अधिक समय सत्संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। उसको अपनी प्रवृत्ति को संक्षेप करना और अपने दोष को प्रतिक्षण क्षणे क्षणे प्रतिक्षण कार्य कार्य पर और प्रसंग प्रसंग पर हर उदय में तीक्ष्ण दृष्टि से देखना, तीक्ष्ण दृष्टि करके, सूक्ष्म दृष्टि करके, बलवान दृष्टि करके देखना। दो का बात साथ में लिया है, बाह्य प्रवृत्ति संकोचना, फिर भी जो उदय रहा है उसमें अपने दोष को, राग को, रस को देखना और देख करके परीक्षण करना, देखना उसी दृष्टि से देखना कि जिससे वो क्षय हो जाए। और यह सत्संग के लिए, ऐसा सत्संग के लिए देह त्याग करने का योग होता हो तो उसका स्वीकार कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि यथार्थ सत्संग है वो अपने प्राण से भी दुर्लभ होता है। यथार्थ सत्संग प्राण से भी दुर्लभ होता है। इतना मूल्य आए बिना सत्संग का की सफलता हो सकती नहीं है। इतना मूल्य आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक बात है। प्रत्यक्ष जो होता है ना, प्रत्यक्ष की बात लिया है, जो प्रत्यक्ष सत्पुरुष मिल जाता है तो फिर उनको दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जिससे हमें उपकार होता हो या हुआ हो उसको लिया है। हाँ, एक में अनंत आ जाते हैं, तीनों काल के आ जाते हैं। एक सत्पुरुष के विनय में, आदर में, भक्ति में, अनंत के भक्ति विनय आदर हो जाता है। और एक का विरोध करने से अनंत का विरोध हो जाता है। हाँ, एक सत्पुरुष में देव शास्त्र गुरु सब समाविष्ट है, कोई बाकी नहीं रहता है। प्रत्यक्ष मिल जाए तो बहुत इसकी बलिहारी है। और सत्संग के लिए देह त्याग करने का योग होता हो तो वो स्वीकार करना, परंतु इससे अधिक, इससे किसी भी पदार्थ में विशेष भक्ति स्नेह राग होने देना योग्य नहीं है। राग शब्द नहीं लेकर के भक्ति स्नेह रखा है, क्योंकि जो सत्संग को गौण करके अन्य पदार्थ में रुकता है तो उसको इस पदार्थ की भक्ति है, राग नहीं लिया है, उसको भक्ति हो गई है, उस भक्ति में लीन हो गया है वो, जब वो सत्संग को गौण करता है, ऐसा होने देना योग्य नहीं है। और उसमें और प्रमाद से, रस गारव आदि दोष से सत्संग प्राप्त होने पर भी पुरुषार्थ धर्म मंद रहता है और सत्संग फलवान होता नहीं, ऐसा जान करके पुरुषार्थ और वीर्य को गोपन करना ठीक नहीं, अच्छा नहीं। क्या कहते हैं, रस गारव आदि दोष से, एक तो किसी को अधिकता नहीं देना और कहीं रस पड़ जाए किसी भी प्रसंग में, किसी भी उदय में रस पड़ जाए और सत्संग गौण हो जाए, ऐसी भूल भी कभी मत करना, क्योंकि उसमें सत्संग की निष्फलता होती है। और ऐसा अपना पुरुषार्थ की ताकत होने पर भी यहाँ पुरुषार्थ को छिपाते हैं या गोपते हैं, मैंने छिपाते हैं, तो भी सत्संग निष्फल होता है। सत्संग यानी सत्पुरुष, यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया 12वें में, तो सत्संग यानी सत्पुरुष की पहचान होने पर भी ऐसा योग निरंतर रहता न हो तो, प्रत्यक्ष योग निरंतर नहीं रहता हो तो सत्संग से प्राप्त हुआ ऐसा जो उपदेश यह प्रत्यक्ष सत्पुरुष तुल्य जान करके बराबर जान करके विचार करना और आराधन भी करना अमलीकरण भी करना कि जिस आराधन से जिसका अमल करने से जीव को अपूर्व ऐसा सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। सत्संग में जो उपदेश प्राप्त हुआ उसको विचार करके उसका अमल करते हैं तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सत्पुरुष निरंतर का योग मिलता रहे ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि हरेक के पूर्व कर्म के उदय अलग अलग होते हैं। भले समाधान करने का वो सवाल नहीं होता है, फिर भी जो बनता है वो बनता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वहाँ भी जो प्राप्त उपदेश का अमलीकरण किया तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। जीव को मुख्य में मुख्य, क्या मुख्य नहीं, मुख्य में भी मुख्य और अवश्य में भी अवश्य, अवश्य नहीं जितना आवश्यक लगे उसमें आवश्यक, मैंने टॉप प्रायोरिटी में ऐसा निश्चय रखना कि जो कुछ मुझे करना है वह आत्मा को कल्याण हो वही करना है। आत्म कल्याण की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर आगे की बात सरल है। जहाँ तक उसका पूरा मूल्यांकन नहीं होता वहाँ तक चेंज ऑफ प्रायोरिटी नहीं बनता, प्रायोरिटी बदलने से आगे की बात सरल हो जाती है फिर। और यही कारण से यह त्रियोग की उदय बल से प्रवृत्ति होती हो, त्रियोग मैंने मन वचन काया की प्रवृत्ति, उसी कारण से होती हो तो होने देना, परंतु आखिर में वह त्रियोग से रहित ऐसी स्थिति होने के लिए करने के लिए यह प्रवृत्ति को संक्षेप करते करते क्षय हो जाए, यही उपाय कर्तव्य है। त्रियोग से आत्मकल्याण की प्रवृत्ति को मुख्य करना और फिर तीनों योग की प्रवृत्ति को कम करके त्रियोग रहित ऐसी जो सिद्ध दशा, उस सिद्ध दशा प्राप्त करने का परिस्थिति का उपाय मार्ग इलाज करना चाहिए, वही कर्तव्य है। यह उपाय का प्रारंभ कहाँ से होता है कि मिथ्या आग्रह का त्याग, स्वच्छंदपने का त्याग, प्रमाद और इंद्रिय विषय का त्याग, यह मुख्य है। वो प्रारंभ में वो चार मुमुक्षु की भूमिका में वो चार की मुख्यता है। यह सत्संग के योग में अवश्य आराधन किया करते ही रहना और सत्संग के परोक्षपणे में, सत्संग के योग में तो वो चारों का आराधन करना, सत्संग नहीं हो तो भी अवश्य अवश्य आराधन करते रहना, क्योंकि सत्संग प्रसंग में तो जीव का कुछ न्यूनपणा मैंने क्षति होती है तो उसका निवारण होने का सत्संग साधन है, अपनी भूल निकलने का सत्संग साधन है। परंतु सत्संग के परोक्षपणे में तो एक अपना आत्मबल ही साधन है, वहाँ विशेष जागृत रहने की बात है। यदि वह आत्मबल सत्संग से प्राप्त हुए ऐसे बोध का अनुसरण नहीं करता, अपना पुरुषार्थ जो भी हमको उपदेश मिला उसको अनुसरण करने में हम पुरुषार्थ को लागू नहीं करते और उसका आचरण नहीं करते और आचरण में होने वाले प्रमाद को नहीं छोड़े तो किसी दिन भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, इसका मतलब कि प्रायोरिटी नहीं आई। जिसको प्रायोरिटी आत्मकल्याण की नहीं आई, उसका आत्मकल्याण कभी भी होने वाला नहीं है। कोई भी साधन छोटा मोटा कर ले, होने वाला नहीं है। आत्मकल्याण होने से संसार के सर्व दुख का अभाव होता है, परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा अचीवमेंट होता है तो इसके लिए क्यों कसर रखना, ये सवाल है। इतना बड़ा लाभ होता है तो हमको इससे बड़ी कौन सी चीज है कि जिस कारण से हम इस लाभ को भी खो दें। ऐसी कोई चीज हो तो बता दो संसार में, ऐसी कोई चीज संसार में है नहीं। इसलिए सबसे पहले मुख्यता आनी चाहिए। मुख्यता नहीं आएगी वहां तक कोई साधन कामयाब होने वाला नहीं है। अब लिखते हैं कि संक्षेप में लिखे गए ज्ञानी के मार्ग के आश्रय को उपदेश करने वाले यह वचन मुमुक्षु जीव को अपने आत्मा में निरंतर परिणमन करने योग्य है। ये ज्ञानी के मार्ग जो है, इसका उपदेश, ज्ञानी के मार्ग का आश्रय कैसे किया जाता है, ऐसा उपदेश है, उसको एक शब्द में मार्ग बोध कह सकते हैं। मार्ग का उपदेश, मार्ग बोध, मार्ग का आश्रय करने का उपदेश, ऐसे वचन आत्मा में निरंतर परिणमन करने योग्य है कि जिससे अपने आत्मगुण में, आत्मगुण को विशेष को, जो अपने आत्मगुण को विशेष विचारने के लिए शब्द रूप से हमने लिखा है। ये तो शब्द है लेकिन भाव जो हुए हमारे, वो आत्मगुण को आविर्भाव करने वाले हैं। इस तरह से सत्संग के विषय में बहुत जो भी वजन दिया है उसका मूल्यांकन कराने के लिए वो मुमुक्षु जीव को बहुत उपकारी है। यहाँ तक रखें।